नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राधाकृष्णन को जनता की सेवा में समर्पित सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। श्री मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वे पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। नेपाल में अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री के नाम को लेकर गतिरोध जारी। फिर एक ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने परम मगसूदलू को हराकर सातवें दौर में बढ़त बनाई। और दुबई में एशिया कप क्रिकेट में आज शाम पाकिस्तान का सामना ओमान से होगा। अब समाचार विस्तार से। श्री सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई।
आई चंद्रावरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन
डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस to the constitution of india
as by law established
and that i will faithfully discharge the duty upon which i am about to enter।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी। श्री सीपी राधाकृष्णन ने इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। एक रिपोर्ट।
4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे श्री राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की है। आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करते हुए वे 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। श्री राधाकृष्णन 1998 और 1999 में कोयम्बतूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वस्त्र के लिए संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2004 से 2007 के बीच श्री राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2016 से 2020 तक उन्होंने कोच्चि के कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फरवरी 2023 में श्री राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को जनता की सेवा में समर्पित सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री राधाकृष्णन समर्पित लोक सेवक हैं और उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण, सामाजिक कार्य और लोकतंत्र को मजबूत करने में समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वे पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
कल शुरू हुए इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। इस सम्मेलन में भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करने और इसे वैश्विक ज्ञान संवाद के केंद्र में रखने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रमुख विद्वान, संरक्षणवादी, प्रौद्योगिकीविद और नीति विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण तकनीक, मेटा डेटा मानक और प्राचीन लिपियों के निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए युवा प्रतिनिधियों, नेपाल के सेना प्रमुख आशिकराज सिग्देल और राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल के बीच बातचीत कल भी जारी रही। कल रात राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल और नेपाल में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमरे ने भी मुलाकात की और मौजूदा स्थिति में संवैधानिक दायरे में समाधान खोजने पर बल दिया। बातचीत में संसद भंग करने या न करने पर आम सहमति नहीं बन सकी। कर्फ्यू आज शाम 5 बजे से 7 बजे तक जारी रहेगा।
डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन 5वें दिन आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्फ्यू में ढील दी गई थी। काठमांडू वैली में शनिवार की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अभी तक अंतरिम सरकार की अगुवाई के लिए किसी का नाम सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाली सेना जेएनसी प्रतिनिधियों और संवैधानिक विद्वानों के बीच वार्ता चालू है। आज से काठमांडू स्थित न्यू बस पार्क से फंसे हुए यात्री अपने गंतव्य स्थानों तक सकते हैं। वहीं नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को निर्देश दिया है कि 8 सितंबर के बाद हुई दुर्घटनाओं में आ रहे इंश्योरेंस क्लेम्स को आसानी से निपटाएं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार देश के सभी 140 करोड़ नागरिकों को साथ लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सामूहिक लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस यात्रा में समावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री रेड्डी आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के लिए और क्रिटिकल मिनरल्स बढ़ाने के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स लगातार 11 साल से ला रहे हैं। आने वाले दिन में गुड गवर्नेंस और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस और देश का आर्थिक प्रगति के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो भी रिफॉर्म्स चाहिए वो रिफॉर्म्स लाने के लिए हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं।
ने कहा कि उनका मंत्रालय झारखंड के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय कोयला क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोयला मंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों और खनन श्रमिकों के लिए 3 लाभों की भी घोषणा की जो इस वर्ष 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस से लागू होंगे। इनमें कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी वर्दी लागू करना, अनुग्रह राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना और मौजूदा बीमा कवरेज के अलावा नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए और 40 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा कवरेज शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का यह सपना 3 सितंबर को साकार हुआ जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों का जीवन सरल बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम करने को मंजूरी दे दी। आज हम मुक्त वस्तुओं पर नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट।
जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त कर आम आदमी पर पड़ने वाले जीएसटी के बोझ को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए कर ढांचे के तहत रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं और दालों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के ब्रेड को भी नील जीएसटी स्लैब में रखा गया है, जिससे वह लोगों के लिए और भी अधिक किफायती हो गई है। लोगों पर कर के बोझ को कम करने और प्रीमियम को अधिक किफायती बनाने के लिए नए ढांचे के तहत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को भी टैक्स से मुक्त किया गया है। यह निर्णय लोगों को स्वास्थ्य बीमा को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। देश भर के लोगों द्वारा भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में एक आम नागरिक निमिष जैन ने कहा कि सरकार ने त्योहारों के सीजन से पहले टैक्स घटाकर लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। नई जीएसटी दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
निर्वाचन आयोग आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। एक रिपोर्ट।
इस कार्यशाला का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि देश में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं और कानूनी तथ्यात्मक तथा नियम आधारित सूचनाओं को समय पर तथा समन्वित तरीके से संप्रेषित करने के महत्व को बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्तों डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में जनता को गुमराह करने वाली गलत सूचनाओं में हाल में हुई वृद्धि को देखते हुए कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीईओ कार्यालयों के संचार तंत्र को तथ्य आधारित प्रतिक्रियाओं के साथ भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने योग्य बनाना है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। मुठभेड़ उस समय हुई जब बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिम इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। घटनास्थल से एक राइफल और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। तलाशी अभियान जारी है। सिक्किम में ग्यालशिंग जिले के रिम्बिक गांव में कल रात भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति लापता हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियां बचाव कार्य में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले के काकोरी क्षेत्र में एक रोडवेज बस के पलट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से दुर्घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने को कहा है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन सुविधा में उन्नत दविंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया गया है। ये भारत में रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। देश के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए पहली बार दविंची प्रणाली की स्थापना की गई है। एम्स में 2 रोबोटिक सिस्टम पूरी तरह से प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज के 7वें दौर में ईरान के परम मगसूदलू को हरा दिया है। सरीन और जर्मनी के ग्रैंड मास्टर मथास ब्लूबाम 5.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से बढ़त पर हैं। इस बीच विश्व चैंपियन डी गुकेश 7वें दौर में तुर्की के ग्रैंड मास्टर एडिस गुरेल से हार गए। दुबई में एशिया कप क्रिकेट में आज पाकिस्तान का मुकाबला ओमान से होगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान इस मैच को जीतकर शानदार शुरुआत करना चाहेगा, जबकि ओमान ये मैच जीतकर इसे यादगार बनाना चाहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन में मराठवाड़ा और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि आज उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मुंबई और तेलंगाना में तेज बारिश हो सकती है।
पूर्व भारत में एक निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम केंद्रीय बंगाल में बना हुआ है, आंध्र प्रदेश कोस्ट में, जिसके कारण से तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का संभावना है। और अगर आगे बात करें तो ये कम दबाव या निम्न दबाव का क्षेत्र है, धीरे धीरे जो पश्चिम के दिशा बढ़ेगा और इसके जो रेमिनेंट है वो महाराष्ट्र तक पहुंचने का संभावना है। और अगर उत्तर भारत का बात करें तो मेनली उत्तराखंड में भारी बारिश का संभावना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राधाकृष्णन को जनता की सेवा में समर्पित सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। श्री मोदी आज शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वे पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। नेपाल में अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री के नाम को लेकर गतिरोध जारी। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने परम मगसूदलू को हराकर 7वें दौर में बढ़त बनाई। और दुबई में एशिया कप क्रिकेट में आज शाम पाकिस्तान का सामना ओमान से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।